माधव जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 28, शीर्षक अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, और आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 33। विभज तनयेभ्यश्माम् राजर्षिर्मलयध्वज आरिराधीशं कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। विजभ तनयेभ्यश्माम् राजर्षि मलयध्वज आरिराधीशुं कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। विभज्य तनयेभ्यश्माम् राजर्षिर्मलयध्वज आरिराधीशुं कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। राजर्षिर्मलयध्वज आरिराधीशुं कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। शब्दार्थ विभज्य बांटकर, तनयेभ्य अपने पुत्रों में, श्माम संपूर्ण पृथ्वी को, राज ऋषि परम साधु राजा, मलयध्वज मलयध्वज, आरिराधीशु आराधना करने की इच्छा से, कृष्णम भगवान कृष्ण की, स वह जगाम चला गया, कुलाचलम कुलाचल नामक स्थान में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की तरह श्री प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तात्पर्य, महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्य में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाए और प्रचार कार्य करें कर सके तो गुरु को चाहिए कि वह अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। यह निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नवदीक्षित के लिए संभव नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्त को ऐसी किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रतरे निर्जन घरे, तब हरि नाम केवल कहते। अरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो, केवल सस्ती पूजा के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु यह सब धोखा है। इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे। प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार के कार्य से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन संघ के भक्तगण संसार भर में विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। नमाओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतल श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषेण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और मैं आपके आशीर्वचनों की याचना करता हूँ जिसके द्वारा मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक चल रहा है और यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने मनोभाव को बता रहे हैं कि अभी कृष्ण भावना कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में मेरे जो शिष्य है वो अभी प्रगत हो गए हैं और सक्रियता से वो इस आंदोलन में जुड़कर प्रचार का जो कार्य है उसे आगे बढ़े और जिससे मुझे अवकाश मिलेगा और मैं हूँ अवकाश में, क्या करूँगा? निज स्थान पर बैठकर किताबें लिखूँगा और भजन करूँगा। यही उनका यहाँ पर मनोभाव है। और यही अगर कोई गुरु कर सकता है तो उनका यश है। अगर वो अपने शिष्यों को इतना अच्छे से प्रगतिशील बनाएंगे कि वो अवकाश ले सके उनकी वृद्धावस्था। और असली माता पिता का भी यही भाव होता है कि जब उन्होंने अपने जो आश्रित पुत्र है उनको अच्छे से पढ़ा, बड़ा किया उन्होंने और उनको कृष्ण भवनामृत में प्रगति किया, तो उस समय उनकी वृद्धावस्था में वो अवकाश प्राप्त कर कर भगवान की भक्ति में पूरी तरह से अपना मन लगा सकते। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूरा जीवन वो संघर्ष करते रहे उनको बड़ा करने में, या उनका जीवन अच्छे से कार्यरत करने के लिए, और वो देखते हैं कि बुढ़ापे में उनको वही संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उससे उनका लाभ नहीं होगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे जो आश्रित लोग हैं उन्हें कृष्ण भवनामृत में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ों पे प्राधान्यता से लिखा हुआ है। पहला है कि व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, और त्याग की भावना किसके अंदर होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और दूसरा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में जुड़ा है उसका कैसा मनोभाव होना चाहिए। और तीसरा है निर्जन भजन, निर्जन भजन का असली स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में त्याग लोग करते नहीं, उनको करवाया जाता है, है ना? कोई त्याग की भावना नहीं रखता, उन्हें त्याग करना पड़ता है। जैसा हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हर साल हम एक एक वर्ग को त्याग करते जाते हैं। बचपन में पहले हमें किंडरगार्टन में डालते हैं, फिर बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो कोई बोलता नहीं कि मुझे उसी में रहना है। वो हर व्यक्ति अगले स्टैंडर्ड में जाने के लिए उत्सुक रहता है, है ना? क्योंकि उसके पता है कि आगे जाके बहुत बड़ा सुख है, तभी तो व्यक्ति उस क्लास को छोड़ने का प्रयास करे। लेकिन कोई बहुत ही अगर महान है तो कभी कभी एक ही क्लास में दो तीन बार अटक जाते और बाकी लोग परेशान होते, लेकिन उसे कुछ नहीं लगते, वो लगता है कि यही मेरा जगह है जहाँ मुझे रहना है। तो वो तो सामान्य तौर से लोग त्याग कर रहे हैं। तो अगर कोई माता पिता देखते हैं कि बच्चा आगे की क्लास में नहीं जा रहा तो उनको बहुत दुख लगता है कि अरे क्या कर रहे तुम, कितने साल से वही क्लास में पढ़ रहे, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो और आगे जाओ। तो अभी वो तो बच्चे को बोल रहे कि तुम आगे जाओ, लेकिन खुद आगे नहीं जा रहे, है ना? जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी क्लास है, उसमें भी त्याग की भावना है, तो उसमें भी हमें आगे जाना चाहिए। अगर हम भौतिक जगत में देखेंगे तो रिटायरमेंट का एज होता है, और वहां पर एक सुविधा भी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर किसी को 60 साल रिटायर नहीं होना है, उसके पहले ही रिटायर होना है, तो गवर्नमेंट ने उधर फैसिलिटी दी, तो कोई लोग उसको भी चुनते हैं, रिटायर होने से पहले ही रिटायर हो जाते। लेकिन वो असली रिटायरमेंट है क्या? तो वो रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पता नहीं कि कहाँ एंगेज होना है, कहाँ पर लगना है। तो बाद में रिटायर होने के बाद भी लोग फिर से दूसरा कुछ जॉब ढूंढते और फिर से लग जाते। तो ये असली त्याग नहीं है। तो त्याग किससे करना है वो हमें जानना चाहिए, और त्याग क्यों करना चाहिए वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं जो नवदीक्षित लोग हैं उनको त्याग करने की बहुत इच्छा होती है। उनको सेवा दो तो बोलते हैं नहीं नहीं हमें सेवा नहीं, अभी तो हमें जप में बहुत रस आ रहा है, हम जप करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, अभी मैं किस लिए यहाँ आया था, जप करने के लिए आया था और वही परम लक्ष्य है, मैं क्यों सेवा करूं, ऐसा उनका भाव होता है। और जिनका टाइम जप करने का आया है उनको जप छोड़ के बाकी सब करने की इच्छा है ना, तो ये विरोधाभास है। जिनको त्याग करना चाहिए वो भोग में लगेगा, जो भोग करना चाहिए मीन्स कष्ट करना चाहिए उनको त्याग में चिंता पड़ी है। तो ऐसा ही एक भक्त को प्रभुपाद जी वृंदावन में लेके गए थे और उनको जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें सीमेंट बैग की गिनती करने के लिए रखा गया था और वो बेचारा दिन भर ट्रक के ऊपर ट्रक आए जा रहे थे, तो उसकी सोला माला हो जाते थे, लेकिन बाकी का जो इच्छा था कि वृंदावन में जाके बहुत माला करना है वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो वो आके प्रभुपाद जी बोलते, मैं वृंदावन में किस लिए आया, जब करने के लिए आया, अभी आप मुझे यहाँ पर सीमेंट बैग की गिनती करने लगा। तो इस प्रकार से नया जो भक्त होता है उनके अंदर बहुत भक्ति की इच्छा होती, जैसा हम भी देखते थे कि जब हम कॉलेज में थे तो एग्जाम के टाइम पे प्रभुपाद बुक पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, और जो हमारे इंचार्ज वगैरह रहते थे वो देखते थे, स्टडी रूम में बिठाते थे, स्टडी करो स्टडी करो, और तब हमको ना प्रभुपाद बुक पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, तो हम अपनी किताब के अंदर प्रभुपाद का किताब रखते थे। प्रभुपाद वो नेक्टर था एक बुक, बहुत अच्छा था, तो उसको एग्जाम के बुक के अंदर पढ़कर रखते थे। लेकिन अभी कुछ एग्जाम नहीं कुछ नहीं, प्रभुपाद की बुक वहां के वहां है और हम जहां के जहां, तो आकर्षण नहीं रहा। तो जो असली में वो जब आकर्षण था वो सब क्या था, वो फंसाने वाला आकर्षण था। तो लगता था कि मैं बहुत भक्ति करूंगा, मेरे मेरे एक ही साल में मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा कुछ कुछ लगता था। लेकिन अभी भगवत धाम तो दूर की बात है, अगर यहाँ पर भी टिके रहे तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा ये होगा, लाभ होगा। तो ये हमारा मन है जो सदैव हमको फंसाते रहते हैं। तो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा है कि ऐसे मन जो हमें भक्ति का प्रलोभन दिखाता है लेकिन हम असली में भक्ति नहीं करते, वो सब दिखावा के लिए होते हैं। तो ऐसे मन को उन्होंने कहा है कि वो दुष्ट है। जो मन भगवान की सेवा के समय निर्जन भजन की कामना करता है वो मन कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति है वो ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे से जाना पड़ेगा और दृढ़ता से जाना है, नहीं तो क्या होगा, हम निराश हो जाएंगे। अगर हमने बहुत बड़ा गोल रखा और वो पाया नहीं तो हम जितना कर रहे वो भी छोड़ देंगे, है ना। इसलिए हमें हमारे हिसाब से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए त्याग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें त्याग करना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि बचपन में हम जो साइकिल लेके चलाते थे उसको बड़ा होने के बाद हम उस पर नहीं बैठते, वो छोटा साइकिल रहते उसके ऊपर बैठ भी नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हमने उसको त्याग कर दिया और हमें उसका दुख नहीं हो रहा है कि अरे मैं वो साइकिल छोड़ दिया, या हमारे कपड़े जो बचपन के थे जिसको हमने झगड़ा करके लिया था और वो बाद में हम उसी कपड़े को देखते कि वो कितने छोटे हो, अभी हम वो पहन भी नहीं सकते। इस प्रकार से हम त्याग कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये भौतिक आसक्तियों का त्याग करना चाहिए, है ना। तो हमें वही चीज़ों में रस लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमारी इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए कि हम सहजता से जो भौतिक वासना है उनका त्याग कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि फिर से वही बचपन के जैसा बचपना चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी परिपक्वता आनी चाहिए कि हम ये भौतिक विकारों का त्याग कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर ये त्याग होना चाहिए, है ना। तो एक है वैराग्य और दूसरा है फल्गु वैराग्य, जिसके बारे में प्रभु गोस्वामी जी बताते हैं, तो उसका वो व्याख्या भी देते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथाहरण उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्चते। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो असली वैराग्य है उसका मतलब क्या है, कि हमें विषयों से अनासक्त होना है और वो कैसा करना है, जो विषय है उनको भगवान की सेवा में लगाना, यू नो। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे बोला जाता है युक्त वैराग्य। तो हर चीज हमारे पास जो भी है, यू नो, शरीर है या कुछ धन धन है या साधन है, उनका असली उपयोग है भगवान की सेवा में लगाना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो है वैराग्य, अनासक्त होकर अगर हम वो वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसे बोला जाता है वैराग्य, यू नो। भगवीता में भी भगवान बताते हैं, मिथ्याचार सोचते कर्मेन्द्रिया ये आस्ते मनसास्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार सोचते। तो ये तो वैराग्य हुआ है, और दूसरा है फाल्गु वैराग्य। कुछ कुछ लोग क्या करते, कर्म इंद्रियों को संयमित करते, लेकिन उनका मन इंद्रिय भोगों पे अटका हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है मिथ्याचार, वो फाल्गु वैराग्य, वो असली वैराग्य नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हम बाहर की दिशा, बाहर की भारी ओर से हम वैराग्य दिखाते, लेकिन अंदर से हम पूरे प्रकार से ललायत है वो चीजों को भोग करने का। तो ऐसा अगर हमारा दो प्रकार का भाव रहेगा तो उसे बोला जाता है फाल्गु, है ना। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मूषोः परित्यागो वैराग्यं फल्गुते। तो इसलिए जब भी हम त्याग की बात करते हैं तो वो त्याग वास्तव में होना चाहिए, वो हमारे अंदर से आना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम त्याग त्याग करते हैं और बाद में इतने बुरी तरह से भोग के प्रति आकर्षित होते हैं। जय श्री श्री राधा मंदिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौरनीताय की जय। तो वो त्याग क्या है, वास्तविक त्याग नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा त्याग करने का जो भाव है वो पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए। जैसा अभी कार्तिक वगैरह चल रहा है या चतुर्मास चल रहा है, तो बहुत बार या एकादशी होता है उसमें हम ना डिसाइड करते कि ऐसा व्रत लेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं है तो जो हम प्रयास करते हैं जिन चीज़ों से त्याग करने का, उसके अंदर हम बाद में बहुत जोर से लग जाते। अगर हमने समझा मिठाई नहीं खाने का अगर ऐसा व्रत लिया और हमारे अंदर उतना धैर्य नहीं है, मनोभाव नहीं है और उतना हमारा परिपक्वता नहीं है, तो बाद में क्या होगा, वो सिर्फ हम क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे कब ये चातुर्मास खत्म होगा। तो हमारा मन भगवान की भक्ति में ज़्यादा लगने से अच्छा हमारा जो वाउज है उसके ऊपर ही ज़्यादा लगे। तो कोई व्यक्ति निर्जल एकादशी करता है वगैरह, अगर उसका हरिनाम में ध्यान नहीं लग रहा है, सिर्फ और निर्जल एकादशी का जो व्रत है वो दिखाने के लिए कर रहा है, तो व्यक्ति का क्या होगा, जैसे ही द्वादशी आएगा तो वो पहले ही बता के रखता है कि मेरे लिए खिचड़ी बना के रखी है या मेरे लिए कुछ व्यवस्था करके रखी है या अगले दिन का फास्ट ब्रेक करने का सब संजोड़ के रखते हैं। तो ऐसा अगर हम त्याग करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ खाने पीने का चीज है, बाकी तो जो पूजा वाला प्रतिष्ठा है उसका तो कुछ क्या कहना। इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज सीखने जैसे है कि जो वास्तविक त्याग है वो अहंकार है, उसको त्याग करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, निर्माण मोह चित संग दोषा अध्यात्म नित्य काम द्वंद्वैरुमुक्त सुख दुख सदने गच्छन्ति मूढ़ा पद्म व्ययम् तत्। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के धाम को पाने की इच्छा रखते हैं उनके अंदर अहंकार बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो अहंकार कैसा आता है, जब हम कुछ करते हैं तो उसके अंदर हमें अहंकार आता है। अगर हम अच्छा कुकिंग करते हैं तो हमें अहंकार होता है कि सबने मुझे वाह वाह बोलना चाहिए। अगर हम कुछ क्लास देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है कि मुझे सब लोग आकर बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा क्लास दिया। या कुछ भी ऐसा कुछ हम करते हैं तो हमारी एक भावना होती है कि मेरे मुझे मेरे अहंकार को बढ़ावा मिले, और तभी हम वो करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो असली भक्त है वो इस अहंकार से दूर रहता है, उसे ना पूजा चाहिए, ना लाभ चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, उसे सिर्फ वो कार्य करने की इच्छा होते हैं भगवान की प्रसन्नता के, और कुछ उनके अंदर मनोभाव होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई रखता है कि वो कार्य करने से उसे कोई हानि होगी या लाभ होगा, इस भावना से वो परे रहकर जब अनासक्त रूप से अगर भगवान की सेवा करता है तो व्यक्ति असली हकदार है भगवान के धाम को प्राप्त करने का। नहीं तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो भौतिक प्रशंसा या भौतिक लाभ के लिए ही करते। तो असली जो भक्त होता है वो भगवान के ही गुण गाने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता, हालांकि उन्हें कोई पहचान नहीं ना पहचान, लेकिन वो अपना भगवान की सेवा दृढ़ता से करते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु बोलते वो श्रीधर को मेरे सामने लिखे, तो जब भक्त वहां पर रहते मौजूद उनको तो पता नहीं चलता ये कौन है श्रीधर। तो ये श्रीधर जो कलावचा है उनके बारे में बाकी अन्य भक्तों को पता ही नहीं था कि कौन है। तो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु खुद अपने बाकी परिजनों को पार्षदों को लेकर वो श्रीधर के घर जाते। तो ये है असली भक्त की पहचान, क्योंकि श्रीधर हालांकि बाकी भक्त उनको पहचानते नहीं थे लेकिन उनकी भक्ति में इतनी अच्छी प्रगति थी कि भगवान स्वयं उनको पहचानते। और भगवान किसी को पहचानते हैं तो बाकी लोगों को पहचानने या पहचानने में कुछ हानि नहीं है ना। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि मुझे भौतिक लोग पहचान रहे नहीं पहचान रहे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न हो रहा है और भगवान उससे संतुष्ट है कि नहीं, या भक्त जो है उनसे वो संतुष्ट है कि नहीं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो ही हमारा लाभ है। तो ये त्याग का असली रूप है, जो त्याग हमें भगवान की तरफ ले जाए, ना कि ऐसा त्याग जो हमारे अंदर और अहंकार उत्पन्न करे। तो कुछ कुछ लोग त्याग करने से ही अहंकारित हो जाते, तो फिर वो त्याग का कुछ मतलब नहीं रहा। तो इसलिए हमें त्याग करना है और अहंकार को भी त्याग करना है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो वही व्यक्ति पूरे जगत में जाकर प्रचार कर सकता है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे। तो भागवत में भी एक श्लोक आता है, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो भगवान के जो भक्त है वो इस धरातल पर इधर उधर विचरण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें जो लोग भगवान से विमुख हुए हैं उनको भगवान की तरफ वो लेके जाना चाहते, और उन्हें दुख होता है जब लोग अधर्म का पालन कर रहे होते। तो इसलिए उनके ऊपर अनुग्रह कर उनको भगवान की भक्ति में लगाने के लिए ये लोग इधर उधर विचरण करते। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, ये है भव्यानि भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त है जो विचरण कर रहे हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो इस मनोभाव से ही ये भगवान के भक्त विभिन्न विभिन्न भागों में प्रचार कार्य करते। तो ऐसा कार्य करने के बाद जब वो प्रचार कर रहे होते हैं तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे कि ऐसे अगर प्रचार करते हैं तो जो वरिष्ठ है उनको अवकाश मिलता है निर्जन भजन करने के। और निर्जन भजन का मतलब क्या है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि निर्जन भजन में व्यक्ति किताबें लिखता है या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते। तो ये निर्जन भजन के बारे में यहाँ पर बताया। तो कभी कभी जो भौतिकवादी लोग हैं वो दिखाते हैं कि मैं मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो लोग भी उससे प्रभावित हो जाते। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मौनी बाबा है या वो है ऐसा है, लेकिन असली मौन क्या है? असली मौन है भगवान के अलावा और किसी चीज का बात न करना। जैसे ही हम किसी को बोलते कि भगवान के बारे में बात करो, तो उनका मौन चल हो जाता है, वो बोल ही नहीं पाएंगे भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भौतिक विषयों के लिए वो सिर्फ बोलते रहते हैं। और हम देखते हैं कि इतने सारे बाहर व्यवस्था है लोगों को बोलने के लिए, लेकिन भगवान के बारे में सुनना और बोलने के लिए कम व्यवस्था है ना, और उस व्यवस्था के हमें लाभ लेना चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो वही निर्जन भजन, तो भगवान के भक्ति में लगना यही निर्जन भजन है कि हम अन्य इंद्रिय भोगों का त्याग कर कर हमारा मन और शरीर भगवान की सेवा में लगा रहे, तो यही निर्जन भजन है। क्योंकि भक्त के लिए और किसी चीज में उनका मन लगाते नहीं हो, जो भी भगवान का कार्य है या भगवान की गुणगान है उसी में ही वो पूरा अपने इंद्रियों को लगा देते। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो निर्जन भजन के जैसा ही। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि नवोदीक्षित जो भक्त है उसको निर्जन भजन करने की बहुत इच्छा होती, क्योंकि वो क्यों निर्जन भजन करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे बहुत प्रशंसा होगी, मेरा बड़ा होगा, मुझे आदर मिलेगा। इस भावना से वो निर्जन भजन के लिए दलायत रहते हैं। और वो क्या होता है कि उसको जो अपने शरीर है या जो अपना वाचा है उसको उसे क्या करना होता है, भौतिक चीजों में लगाने के लिए वो प्रवृत्त होता है और उससे वो उद्विग्न हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि अभी ये सब त्याग करो, अभी मैं भगवान के सिर्फ शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करूँगा। लेकिन वो जो त्याग है वो किस कैसा है, वो मैच्योर नहीं, वो जो त्याग है वो किस लिए, उद्विग्नता से वो त्याग लिया है। और ऐसा ही उद्विग्नता से वो त्याग कर कर वो भगवान की भक्ति में लगने का प्रयास करेगा तो उधर भी वो उद्विग्न हो जाएगा, माला करेगा करेगा और बाद में वो माला से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा उसको भी छोड़ देगा और फिर से वो भौतिक कार्य में लगेगा। इसलिए जो हम भौतिक त्याग करने का जो सोचते हैं वो हमारे परिपक्व अवस्था का भाग नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक और एक भौतिक चीजों से परेशान होने के बाद हम सोचते हैं कि मैं भक्ति करूँ। लेकिन कभी कभी लोग भक्ति से भी परेशान हो जाते, और वो परेशान होने के बाद क्या, उनके पास कुछ रहता नहीं, फिर से वो भौतिक चीज में लग जाते। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से भौतिक चीजों का त्याग करना है और बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में मैच्योरली लगे रहना है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो वही हमारे लिए लाभदायक होगा। तो जब हम भक्ति में नए नए हैं तो हमें इतना परिश्रम करना चाहिए भगवान की सेवा में, इतना हमारा जो शरीर में जो भी ताकत है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और ऐसा हम करेंगे तो हमारे शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगने के बाद हमारा मन भी भगवान की सेवा में लगने का एक क्या है, चांस होता है ना। नहीं तो अगर हम शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि वो भगवान की सेवा में लगेगा, वो फिर से हमें भौतिक प्रलोभन के प्रति आकर्षित करेगा। हालांकि हम पूरे भौतिक चीजों से आप्लावित रहेंगे या हमारे पास सब कुछ रहेगा, किताबें रहेंगी, भक्त रहेंगे, प्रसाद रहेगा, सब रहेगा, लेकिन मन वहां पर नहीं रहेगा, वो जाएगा हमें मंदिर से बाहर लेके जाएगा। तो ऐसा त्याग का कुछ लाभ नहीं है। तो हमें इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं उनको पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, और जिससे हम मन को भी आगे जाकर भगवान की सेवा में लगाएंगे। और जब मन पूरी तरह से भगवान से आकर्षित हो गया है और इतना वो परिपक्व हो गया है कि अगर हम इंद्रियों को छोड़ भी देंगे भौतिक संसाधनों के साथ या भौतिक इंद्रियों के साथ, तभी भी वो मन इतना अच्छे स्तर पर गया है कि वो शरीर इंद्रियों को वो भौतिक सुख में जाने नहीं देगा, तो वो अवस्था हमें प्राप्त करना है। तो अभी हम उल्टा कर रहे हैं, अभी हम हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे, और जिससे हमारा मन पकड़ में आएगा
और जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान को आकर्षित हो जाएगा, फिर वो मन जो भगवान से आकर्षित है, वो मन कभी भी हमें हमारे इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगने नहीं देगा। तो वो अवस्था में हम निर्जन भजन करने के लिए लायक बन सकते हैं, है ना। तो उसी अंतर्गत एक श्लोक है जो हम सुनते हैं, सवे मन कृष्ण पदारविंदोर वांसांसि वैकुंठ गुणानुवन्ने करो मंदिर हर्जन मंदिर मार्जनादिश। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, अम्बरीश महाराज के जीवन में उनका मन कृष्ण के सेवा में था, लगा हुआ था। स्वयं मन कृष्ण पदार, उनका मन पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में लगा था। और ऐसा जो मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, वो मन से क्या लाभ होता है, तो वो मन जो कृष्ण भावना भावित है, उस मन से जो शरीर में वो मन है, उस व्यक्ति की वाचा कैसी रहती, वो वैकुंठ गुणानुवन रहती। वो व्यक्ति जो भगवान के चिंतन में मनो उनका भाव है, वैसे व्यक्ति का जो मुख है उसमें से सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें आती रहती। जैसा कोई व्यक्ति पागल है, उसको भूत ने पकड़ा है, तो वो भूत से पकड़ा हुआ व्यक्ति कैसा अनाप शनाप बातें करते रहे। उसी प्रकार अगर हमें भी कृष्ण ग्रह से हम प्रभावित है या कृष्ण भानुभाव से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रेम में पूरी तरह से लगा हुआ है, उस व्यक्ति के मुख से भगवान के ही गुणगान आते, और कुछ नहीं बात करेगा। और उसके जो शरीर की सब इंद्रिय है, वो भगवान की सेवा में ही ललायत रहते। तो इसलिए ऐसा मन जो कृष्ण भावना प्रभावित है, वही व्यक्ति निर्जन भजन करने के लिए अधिकारी। नहीं तो हमें लगता है कि मैं भी अभी निर्जन भजन करने के लिए क्या है, अभी मैं एडवांस हो गया हूँ, मैं निर्जन भजन कर सकता हूँ, अभी बहुत सेवा कर करके मैं थक गया हूँ, अभी मुझे सिर्फ निर्जन भजन करना। लेकिन भक्ति ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा अपरिपक्व अवस्था में कोई निर्जन भजन करने का प्रयास करता है, तो वो उसका मन वो जो है वो दुष्ट है। वो दुष्ट मन उसे क्या करेगा, प्रतिष्ठा की तरफ लेके जाएगा, और उसका हरिनाम सिर्फ कैतव रहेगा। वो हरिनाम असली हरिनाम रहेगा, वो सिर्फ कैतव है। तो इस स्वांग से हमें बचना है। तो हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाकर हमारा मन कृष्ण भावन प्राप्त करना है। तो उसके लिए आसान तरीका है, हमारी अंदर जितनी भी शक्ति है उतनी हम भगवान की सेवा में यूज करें या प्रयोग में लाए, तो उस प्रकार से हमारा मन एक दिन कृष्ण भावना प्रभावित हो जाएगा, और हम जो सबसे मुश्किल चीज है वो अहंकार को हम त्याग कर पाएंगे। तो उसके अंतर्गत एक तुकार महाराज का श्लोक है, अभंग है, उसको मैं देना चाहता हूं। उठा उठी अभिमान जाय ऐसे स्थल कोन, ते या पंडरिसी घड़े खड़ा पाजर रोकड़े, नेत्री अश्रुचिया धारा कोठे रोमांच शरीरा, तुका मने काला कोठे अभेद देखिला। तुकार महाराज यहाँ पर अच्छा बता रहे कि भगवान का जो धाम है वह ऐसा जगह है जहां पर अभिमान बिल्कुल रहता नहीं। उठा उठी अभिमान, तो अभिमान उठ जाता है उनके अंदर से। तो ये कहां पर है, ऐसी जगह कौन सी है, तो वो बोलते हैं ते या पांडवी शिखर। ऐसा अभिमान विरहित जीवन कोई जीता है, ऐसा जगह कौन सा है, तो वो है भगवान का धाम। और विशेषता क्या है उस धाम की, खड़ा भाजर पाजर रोकड़े। अगर दुष्ट व्यक्ति भी उस धाम में जाता है, तभी भी उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर से कृष्ण भावना प्रेम का जागृति होते। तो ऐसा वो धाम है। और वो धाम में और क्या होता है, नेत्री अश्रुचिया धारा कोठे रोमांच शरीर। तो उस धाम में व्यक्ति के अंदर आंखों से पानी बहता है और उनके शरीर के ऊपर रोमांच आते हैं। तो ऐसा वो धाम है। तो पंडरपुर तुका मने काला कोठे अभय देख। और उस जगह पर भक्त इतना तन्मय हो जाता है भगवान के अंदर, और भक्ति में इतनी तरह से पूरी तरह से लग जाता है कि वो अपना भौतिक शरीर को ही भूल जाता है। तो ये अवस्था व्यक्ति को प्राप्त होता है भगवान के धाम में। और भगवान का धाम, हर मंदिर जो भगवान का है वो धाम है। जैसे प्रभुपाद जी ने जितने जितने मंदिर निर्माण किए वो सब अभिन्न है वैकुंठ से। तो उसके अंदर हम रहने के बाद हमारे अंदर भी यही गुण प्रदर्शित होना चाहिए कि हमारे अंदर अभिमान नहीं रहना चाहिए और हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा बहनी चाहिए और हमारे अंदर कुछ रोमांच खड़े होना चाहिए। अगर हम दुष्ट भी रहे तो भी हमारे अंदर से दुष्टता चली जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे से विपरीत होता है हमारे अंदर। अगर हम इस धाम में रहते हैं तभी भी हमारे अंदर कभी दुष्टता आती है और अभी हमारे आंखों से अश्रु बहते हैं लेकिन वो अलग कारण के लिए, हाँ कि बहुत सेवा मिल गया मुझे, बहुत ये हो रहा है, उससे हमारे अंदर अश्रु आ जाते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर रोमांच भी आ जाते लेकिन जब पता चलता है कि अरे मुझे ये करना है वो करना है, हाँ वो सुन के ही लगता है कि अरे बापरे, हाँ तो इस प्रकार से हमारा अलग ही भाव होता है। तो हम ये धाम पर रहकर भी धाम से अभिन्न हो जाते है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है जिनके हृदय में सदैव वृंदावन है, वो लोग अगर किसी भी जगह पर जाते हैं तो वो उसको धाम बना देते। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसा व्यक्ति ही निर्जन भजन करने के लिए पात्र है। तो हमें हमारा हृदय टटोलना है और देखना है कि हम असली में निर्जन भजन करने के लिए हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं, तभी उसके बाद हम साहस करना चाहिए निर्जन भजन करने। अन्यथा जो भक्तों के साथ भजन चल रहा है वही करते रहे, वो भी किया तो बहुत बड़ी हमारे लिए प्रगति है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ही हमारा इस जो जन्म का चक्कर है यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, ये राजा जो पहले राजा था बाद में स्त्री हो गया बाद में पुरुष हो जाएगा, यही चक्कर चल रहा है। हर योनि में हम पुरुष रहेंगे नहीं तो स्त्री रहेंगे और उसका तो दूसरा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर इस चक्कर से हमें बाहर जाना है तो एक ये प्रार्थना है जो हमारे वृत्रासुर जी ने बोले है, वो प्रार्थना लिखने में यहाँ पर विराम लूंगा। मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायात्मजदार्गेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूयात। तो वो प्रार्थना करते भगवान को, भगवान अगर मुझे संसार चक्र है उससे बाहर गिरना है तो मुझे, और ये जो दार है या घर है या स्त्री है या संपत्ति है या परिवार है, इन सब आसक्ति से मुझे अगर बाहर निकालना है, जहाँ पर मेरा चित्त लगा हुआ है ये आसक्ति से अगर मुझे बाहर निकलना है, हालांकि वो बहुत मुश्किल है, फिर भी वो मुश्किल चीज़ आसान है जब मुझे आपके भक्तों का संग मिलता है। तो इस प्रकार हमें ये बहुत दुर्लभ लाभ मिला है कि भक्तों का संग करना। तो ऐसे जो प्रगत भक्त है श्री प्रभुपाद जी और उनके शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य, इन वैष्णवों का जब हमें संग प्राप्त हुआ है, अगर हम अच्छी तरह से वो संग का आस्वादन करेंगे और पूरी तरह से हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये जो दुर्लभ है अहंकार से निकलना वो आसानी से हमें प्राप्त होगा। और वो अहंकार से अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हमारे लिए वैकुंठ धाम यहाँ पर ही प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही आशा से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी ऐसी चेतना में लगने का आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती होगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।